چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کے حصے جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے۔
کہاں اے سلیمانی رہوان، دیر کر دی تم نے؟
ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں۔ ضربی، ابو اسحاق ہے؟
جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بیتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کیان کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔
ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔
سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔
خوب کیان، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟
خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے، اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔
مسلم ابن عقیل؟
مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔
نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟
15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔
مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟
کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔
یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟
نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے، لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا۔ سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔
شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔
ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔
تمہیں کیسے معلوم؟
غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔
اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔
ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔
نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے، اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔
میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔
دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزید قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو، جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔
کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟
صلہ رحمی کی بجا حوری کے لیے۔
یہی
نہیں، 1 تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔
پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟
بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔
مختار، मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ।
कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो।
तुम मेरे बाप के मद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा, कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है?
तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ।
नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं।
क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक?
नहीं कियान, मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं।
उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा ना खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और नफरत का सजावार हो।
उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया?
मैं उम्मे साबित की जबान के जख्मों का आदी हो चुका हूँ। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूँ ताकि तुम्हारे हाथों अपनी ज़ात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूँ।
मैं शर्मिंदा हूं कियान। उम्मे साबित के तर्क बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है।
आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान की मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ोकात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं?
तुम क्या देख रहे हो क्यान?
एक हिलता हुआ काला जर्रा।
फिर तो यह शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बरहूत के मैदान से तो अरबी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता। آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟
میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔
مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں، کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، بہت میٹھی لگی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔
یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔
ہم سب خداؤں کے جھرمٹ میں ہیں، شیطان اسی پر مامور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا۔ ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان درزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔
ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا۔ کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟
نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا۔ دو رابان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔
حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہود ایک جہنم ہے، اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی، اگر حجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا۔
کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟
نمک کی وادی کی طرف سے۔
سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟
کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمند سے نکل آئے۔
کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟
نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو، ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے۔
کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ٹھیروں ٹھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟
جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں۔ شیعوں کی اگر کوفہ میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔
تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعی نبی کے بیٹے کی طلبگار ہیں؟
کیا عرض کروں، طالب تو ہیں مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا۔ हाथ बढ़ाओ इब्ने अकील, मैं चाहता हूं कि सफीद हुसैन इब्ने अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन।
मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए, मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
मुस्लिम इब्ने अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्ने अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने अख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद।
मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई।
अभी फैसला करना जल्दबाजी है क्या?
किस बात पे दिल में शकड़ा रहे हो अबू इसहाक?
जानते हो मैं क्यों डर रहा हूँ बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में हैं, बनस्पत ये अलवी हुकूमत बरपा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालफीन का कला कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे?
ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो।
अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं।
जाना चाहती है? कहाँ?
पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफुल साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं।
कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है?
क्या अर्ज करूँ, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है।
शैतान को अपने आयाल की जिल्द में से निकाल कर भगाने के लिए गया है।
अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है, मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब का उम्मे साबित का सर कलम कर चुका होता।
ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे हैं। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंग है, पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं, मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है।
अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुशू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो।
मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था।
अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या?
मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूँ। एक गोश का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। क्यान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा उज्र गुर्बत के मुस्तैक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया। जितनी बार क्यान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग क्यान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ।
मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर।
मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या?
उम्मीद साबित और फरार, तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे।
वाए हो तुम्हारे बुरे ताले पर औरत, लाना तो तुम्हारे नीचे पर।
नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन? कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा?
तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कमर नहीं बांधी तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो?
आप इस घर से नहीं जा सकती।
तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्ची?
आप किस बात पर नाराज हैं?
इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाऊं या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ।
साबित बेटा।
जी बाबा।
अम्मा से जबान दराजी मत करो, मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ।
ठीक है बाबा।
थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह ना होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में ना होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता।
तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं।
सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक के जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमां मत करो।
तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार।
मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अजम और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है
कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम के जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादुल्लाह सालेहीन।
फिराक से खुदा की अमान, याकूब नबी आँखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो के रसूल खुदा थे, उनको हिजर की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। हमारे मरने से पहले कुछ कीजिए, हमारी मुराद लिख दीजिए कि वह आ जाए, मुस्लिम लिख दीजिए।
क्या मुझे हुक्म देना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए?
बाबा जान, मुझे अभी आना मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती आपके और मुख्तार के दरमियान इस जंग का अलायकार बनूं।
उमरा बेटी, तुम्हारे अजीज शोहर ने सारे शहर को तहुबाला किया हुआ है। उसने अपने घर को फितने की आमाज का बनाया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने आप को और अपने साथियों को फना के रास्ते पर ले जाना चाहता है। उमरा बेटी, तुमने तो अपने शौहर को राम करने के आदाब अपनी मां से खूब सीखे हैं, अपनी जनाना महारतों से काम क्यों नहीं ले रही हो ताकि उस सरकश मखलूक को ठंडा कर सको?
मैं मुख्तार की जिंदगी में इसलिए शामिल नहीं हुई हूँ कि मैं उसे कैदी बनाऊं। सरे तस्लीम खम करने वाला मुख्तार मेरा मनचाहा शौहर नहीं है बाबा।
यानी तुम मुख्तार के आखिरी इकदाम से मुआफिक हो?
मुझे अपने शोहर के फहमो शऊर पर यकीन है बाबा, यकीनन बगैर फायदे के वो इतना कुछ नहीं कर रहा।
कर रहा है बेटी, कर रहा है। रसूलुल्लाह की कसम, बेफायदा काम कर रहा है वो। उसने सैलाब के रास्ते में घर बना लिया है, मुस्लिम उसके घर का मेहमान बना है। इस बात की खबर अगर यजीद तक पहुंच जाए, जो कि यकीनन पहुंच गई होगी, तो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा।
तुम यहां क्यों आई हो?
उसी वजह से जिसकी खातिर तुम यहां हो।
उमरा तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी है मुख्तार। शौहर की बात मानना उस पर फर्ज है और वालदैन का हक अदा करना उसकी तकलीफ शरई है। तुम्हें कोई एतराज है?
एतराज नहीं, एतराज तो नहीं, मुझे ताज्जुब है क्योंकि उमरा आना नहीं चाहती थी।
मैंने इसे यहां हाजिर करवाया है बिल्कुल तुम्हारी तरह।
फिर तो हमारा काम तमाम है उमरा। जलील होने के लिए हाजिर किए गए हैं या कुर्बानी के लिए?
मुख्तार कुछ अकल की बात करो। तुम लोग हाजिर करवाए गए हो, मगर मैंने हाकिम कूफा की हैसियत से नहीं बुलवाया, बल्कि एक बूढ़े और खैरख्वाह बाप की हैसियत से, ताकि तुम लोग मेरी बात सुनो। कूफे के लोगों पर तकिया करना एक टूटी हुई दीवार पर तकिया करने के बराबर है। کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے. یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں. ان کی باتوں پر ناز نہ کرو, ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو, ان پر بھروسہ مت کرو. یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے. اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا.
میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں. میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں, یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے.
جی نہیں, تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار. تم دہر کے اس پار, میں اس پار. تم عنقریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا. آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے. تم اپنی آبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی آبرو کی. تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے, تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تعصب دکھائے گا. ایک انصاری مجاہد سے بعید ہے کہ یزید کو برحق سمجھے. یقیناً یزید نے اسے ڈرایا ہے.
مجھے ایک ڈرپوک باپ کے رشتے پر طنز مت کرو مختار.
یقیناً آپ بہت حساس ہو گئی ہیں عمرہ. آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو.
کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیخ کے گھر چلے جاتے؟ شیعہ مردوں کی قحط سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بن کھڑے ہوئے؟
اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں. گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھے نہیں دینا پڑے گا. روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دے دے.
مختار, تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکم کوفہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سعد جیسے لوگ جو اس تخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری حاکم کوفہ سے رشتہ داری کا چرچا شروع کر دیں گے. نعمان چلا جائے اور عمر سعد آ جائے یہ ٹھیک رہے گا, یا نعمان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے یہ بہتر ہے؟
عمرہ, کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے, کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے یہاں. یہ لوگ اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں. مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے.
ام ثابت کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا گھر شیعوں کا دارالحکومت ہو گیا ہے.
ام ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے. وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنو ہے.
دروازے سے کہہ رہی ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں.
عمرہ, دیوار نہیں ہے بانو, ہم سفر مختار ہیں. یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا.
اپنا خیال رکھنا مختار.
تم کس کے ساتھ آئی عمرہ؟
زربی کے ساتھ.
زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں.
اس نے اجازت مانگی کہ اپنے آقا کے گھر کا چکر لگا لے. ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی, یہ بہانہ کیا اس نے. میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے.
تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوتن کے گھر ہو؟
میرا بہت دل چاہتا ہے مختار, مگر میں ڈرتی ہوں کہ اس کی خبر حاکم کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں. آج مجھے آگ کر دیا ہے, کل میرا حشر نشر کر دیں گے.
آگ کر دیا ہے؟
تم نے نہیں سنا, انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم سے رشتہ داری کا انکار کر دیں.
شرمندہ ہوں عمرہ, مشکل میں آ گئی ہو تم.
मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ।
मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क्याम के लिए मजबूर ना कर दें। अनकरीब माविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मक्स वाली और नाफहम जमात में जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में कयाम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुर तश्वीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं।
ये डर गया है, नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है।
इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते, इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकना चूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के घर में पर नहीं चल रहा, इस बात पे जल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता।
कि फलां का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है, सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नुमान इब्ने बशीर वालिये कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्ने अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए।
इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें।
इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है, इतनी बेकार बातों पर तुफ है।
इतना आजदाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा जनाब नुमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा, आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था।
अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी, मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं।
खुदा कबूल करे,
खुदा कबूल करे,
खुदा कबूल करे।
ये वो कब्र है जो नुमान के लिए खोदी है मैंने, पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह के रखपत रखने वाले का शिकार बन जाएगा।
मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है।
पिसारे साद अभी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने माविया को।
पिसारे साद अभी वकास, इस साद के बेटे का नाम कितना आसिम सदा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? और फिर कौन सा अदबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और माविया की जंग में किसी का तरफदार नहीं था, या वो साद अभी वकास के जिससे माविया हमेशा डरता था, क्योंकि उसको अपनी हुकूमत का मुद्दई समझता था और सरंजाम उसको जहर दे दिया। अगर यजीद की नजर भी साद अभी वकास पर पड़ जाए तो खुद को पड़े बगैर ही जला देगा। तुम्हें लिखना चाहिए था कि एक दिलसोज और मुखलिस सिपाही की तरफ से जो दर्द दिल रखता है, जो कि एक तवील उम्र से अपने बाप की जहालतों की बदनामी का दाग भुगत रहा है, या उस सरदार के बेटे की तरफ से जिसने अपनी तमाम खिदमात को एक खता पर जाया कर दिया है।
कबूल किया। बाकी सुनो, खिलाफत पदरे बुजुर्गवार की मौत का गम कैसे भूला जा सकता है। हारून उसके सामने भिखारी था, हातम ताई उसके सामने कंजूस था, सिकंदरों किसी हैबत रखता था और अरब के लिए बाई से फख्र था।
इसमें से था कुछ कम करो।
वो हबीब खुदा, वो खलीफतुल्लाह, वो कातिब वही, वो खालुल मोमिनीन, वो जो सात अकलीम के खुसरवान के सर का ताज थे, ये जो एक बंदे की जबान से सफा पर मकतूब की शक्ल में आ रहा है, ये खून दिल है जो के पारा पारा हो गया था जब तेरे मरने की खबर सुनी।
काफी है उमर, इसके बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ तुमने लिखा है ये सब चापलूसी और हीलागरी है। तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला।
मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूँ जारिया, ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शहर है।
अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुँचना चाहते हो तो लिखो, कुफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। वसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रेका हुसूल है।
मरा, तुम रो रही हो, क्या खबर है?
खबर यहां है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है।
मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा।
मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से यह बोझ उठा लिया। मुमकिन था कि इस बारे अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा?
उमर साद के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकरर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज पर लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं।
मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उमर साद इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा।
आपकी समझ बूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अकलमंद हाकिम नहीं चाहता, उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है।
मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कतलगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसी लिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता, आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था, वो काम जो इबने ज़ियाद नफहम ने बसरा में किया, सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इबन अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीसी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरम जगह पर जाना होगा, बाबा की जान।
पुरम जगह? मसलन कहाँ?
ताइफ जैसी कोई जगह, मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है।
ख्याल अच्छा है, इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ।
मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने यह अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शोहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शोहर के साए से बढ़कर कोई पुरमंतर जगह नहीं है, मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है।
गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इतने ज्याद का हद बंदी करना कोई नुमान का हद बंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ के मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ।
मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलख अंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हैफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो।
सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को नियाम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे।
बाबा जान, मेरी इज्जत लफ्का में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफ्का मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी।
मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो?
मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं।
मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मजलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो?
मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ, बस हद शौक रुकूंगी।
खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तोहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीला गरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना, اپنے اور سلیمان جیسوں کو مت دیکھو، بہت سے وہ کوفے والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو تھے اور لبیک یا حسین کی آوازیں لگا رہے تھے، انہوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم و دینار پر رضامندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی، اور تم اور تمہارے ساتھیوں پر زور زور سے قہقہے لگا کر مذاق اڑایا۔ اگر تم چاہو تو ان میں سے ایک ایک کا نام تمہیں بتا دوں۔
نعمان نے مجھے وہ خبر سنائی جو انتہائی پریشان کن ہے۔
کیسی خبر؟
بیعت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی پر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔
مختار، برا نہیں ماننا، تمہارا محترم سسر ذاتی طور پر ایک اموی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معزول کر دیا ہے، مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے۔ اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں۔ اگر گندم کے 100 دانوں میں سے 10 دانے خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجڑنا تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔
کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟
ہاں، ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراً بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے، پس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنی حفاظت کرو تم سب۔ جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے۔
کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں۔
کس طرح؟
یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔
اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی فتح کی لذت اس کے بدن کا زہر بن جائے۔
مختار، بے شک تم نے اپنے چچا سعید کی یاد تازہ کر دی، خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کیا۔
افسوس ہے کہ حالات بدل گئے اور آپ نے نتیجتاً ہم سے مہمان نوازی کا حق چھین لیا۔ اگر آپ کا اپنا ارادہ نہ ہوتا ہمیں چھوڑنے کا تو خدا کی قسم میں اپنے خون سے آپ کی مہمان نوازی کی ضمانت دیتا۔
درود و سلام تم پر میرے بھائی۔
درود و سلام ہو آپ پر۔
مجھے کوفہ کے اطراف کے حالات سے بے خبر مت رکھنا، میں بھی تمام تر خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔